खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सो हम निकालेंगे इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 20वीं आयत। हमने पिछले दिनों में 19वीं आयत मुकम्मल की है, आज हम 20वीं आयत में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाने में कौन सी कुव्वत सरगर्म अमल थी, यानी कि काम कर रही थी। और मुर्दों की क़यामत के बारे में सीखेंगे कि बहुत से उस दौर में और आज भी मुर्दों की क़यामत और जी उठने के बारे में क्या हैं, मुनकर हैं। सो आए हम खुदा के हुज़ूर झुकें और खुदा से हिकमत और दनाई मांगें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, और खासकर खुदा बाप तेरे लिखे हुए कलाम के लिए जो बाइबल मुकद्दस है, कि तूने हम सबको बख्शी। और खुदावंद शुक्रगुजार ये भी हैं इस बात के लिए कि हमारे सब के पास बाइबल मुकद्दस है। और खुदावंद उन लोगों के लिए खुदावंद दुआ करते हैं जिनके लिए खुदावंद खुदा तेरा कलाम पढ़ना और जिन तक तेरा कलाम पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, उन सबको खुदावंद खुदा अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 20वीं आयत। 19वीं आयत में से आप सब जानते हैं, महीनों से सीख रहे हैं कि खुदा पाक रूह की जो कुव्वत आप सब के लिए, मेरे लिए, हर एक ईमानदार के लिए जमीन पर मौजूद है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जब यीशु मसीह अपने शिगिर्दों पर नाजल होता रहा, जाहिर होता रहा, तो उनको कहा कि तुम रूहुल कुद्दस कुदरत को क्या पाओगे, अपनी जिंदगियों में जल्द पाओगे। रूहुल कुद्दस नाजल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया की हदों तक जाकर मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। तब से लेकर आज तक खुदा का पाक रूह जमीन पर क्या है, मौजूद है। सो आज हम 20वीं आयत में से सीखेंगे। सो मैं चाहता हूं कि हम सब इस आयत को पढ़ें, जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। आमीन। यहां पर पालूस रसूल कहता है जो उसने, यहां पर लफ्ज जो उसका इस्तेमाल हुआ है ये खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और हम इसे पढ़ सकते हैं, खुदा ने मसीह में जो की। इसमें से सीखने की बहुत सी बातें हैं, बाइबल मुकद्दस बहुत गहरा खुदा का कलाम है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे जितना आसानी से सीख सके ताकि हमारे दिलों में बैठ जाए। लफ्जों की बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बातें हैं जिनको सीखने की जरूरत है। बहुत दफा मैं घबरा जाता हूं कि कोई ऐसी बात ना छेड़ूं जो कि हम सब के लिए मुश्किल का बायस हो। मिसाल के तौर पर यूनानी जुबान में जब भी कोई बात लिखी जाती है तो उस बात कहने के पीछे एक लहजा है। कुछ दफा सलाह के तौर पर कहा जाता है, कुछ दफा बयान के तौर पर कहा जाता है, कुछ दफा नसीहत के तौर पर कहा जाता है, और कुछ दफा खुदा क्या कहता है, हुक्म के तौर पर, कि ये हुक्म है। जैसे पालूस कहता है, मैं कहता हूं खुश रहो, ये क्या है, ये हुक्म है। फिर उसके बाद एक जगह पर पालूस रसूल कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम बदी की जिंदगी गुजारो, ये क्या है, उसके दिल की ख्वाहिश है। खुदा नहीं चाहता कि हम बदी की जिंदगी गुजारें। सो यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल दुआ करते हुए उस सच को बयान करता है जो हमने पढ़ा पिछली 19वीं आयत में, कि हम सब ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने। बात मिल गई ना पिछली 19वीं आयत से 20वीं आयत के साथ। अगर मैं 19वीं आयत पढ़ूं और 20वीं आयत का आपको आगा पीछा ना बताऊं तो समझ आएगी नहीं, इसलिए कोशिश करता हूं कि आसान से आसान। आज हम इसी आयत में से सीखेंगे, जो उसने मसीह में की। یعنی کہ خدا نے وہ قوت ظاہر کی مسیح میں جب اسے مردوں میں سے جلایا، اور جلا کر کیا کیا؟ آسمانی مقاموں پر اپنی داہنی طرف بٹھا دیا۔ ہم نے کل سیکھا تھا کہ یسوع مسیح خدا کی داہنی طرف یعنی کہ دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہاں پر وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ سب کے لیے دعا۔ آپ کو یاد ہے کل کا حوالہ رومیو 8:5 اس کی 31 آیت سے لے کر 35 آیت تک، کہ خدا اگر ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ خدا نے اپنے بیٹے کا دریغ نہ کیا، اسے قربان کر دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے اس کے کیا بن سکیں؟ بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں، تاکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب اس کے خاندان کے لوگ بن سکے، تاکہ ہمیں ایک نئی پہچان مل سکے۔ یاد ہیں یہ باتیں؟ تاکہ ہماری ایک نئی حالت ہو، نئی پہچان ہو، نیا مقام ہو۔ سو آج ہم یہاں پر سے سیکھیں گے، اس دور میں یعنی کہ مسیح کے دور میں، پالوس کے دور میں، کچھ ایسے گروپ جسے کہتے ہیں فرقے پائے جاتے تھے جو مردوں کے جی اٹھنے کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی روح ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، اور ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس وقت یسوع مسیح کے دور میں یہ لوگ پائے جاتے تھے۔ سو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، اور یہ حوالہ آپ میں سے کوئی بھی، چاچا جوید پڑھ سکتا ہے، بہنوں میں سے بھائی، بھائیوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ امال کی کتاب اس کا 23:23 ہم نکالیں گے، اس کی 6 آیت سے۔ امال کی کتاب اس کا 23:23 اس کی 6 آیت۔ ہمارے لیے یہ حوالہ اگر کسی نے نکال لیا ہے تو وہ پڑھیں۔ امال 23:23 اس کی 6 آیت۔ جی بھائی راجو نے نکال لیا، وہ چاہ رہے ہیں کہ پڑھیں۔ کھڑے ہو کر یہاں پر آ جائیں تاکہ نہ سب پر آواز پہنچ جائے۔
خدا کے زندہ مقدس کلام میں جو لکھا ہے، ایمان کی کتاب 23:6، جب پالوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی، تو عدالت میں پکار کر کہا کہ اے بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں، مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔
آمین۔ شکریہ۔ ایک بار پھر یہ آیت آپ سب کے لیے پڑھوں گا، امال کی کتاب 23:23 اس کی 6 آیت۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول جب قید میں ہے تو یہودی اس کی مخالفت میں ہے، فریسی اس کی مخالفت میں ہے، تو یہاں پر وہ قید خانہ میں ہے اور لوگ اسے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بدنام کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، اس کی قتل کی سازش بھی کریں گے اسی باب میں۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، جب پالوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی اور بعض فریسی ہیں، تو عدالت میں پکار کر کہا کہ اے بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں، مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تکرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی۔ 8 آیت پر غور کریں، کیونکہ صدوقی کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ سو یہ وہ فرقہ تھا جسے کہتے ہیں صدوقی، جو یہودیوں کے خلاف تھے اور یہ مردوں کے جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے، فرشتوں کا انکار کرتے تھے، اور نہ ہی کسی روح کا کیا کرتے تھے؟ یقین کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے پالوس پر مقدمہ چلایا، پالوس پر الزام لگایا، پالوس کو کس وجہ سے انہوں نے پکڑا تھا؟ کہ پالوس یسوع مسیح کی منادی کرتا تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے، اور آسمان پر خدا کی داہیں طرف جا बैठा है। आपको याद होगा जब स्तिफनस ने जब उसे संसार किया गया तो उसने भी कहा कि खुदा तुमको माफ करे क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह को खुदा की दाही तरफ आसमान पर तख्त पर बैठा हुआ देखता हूं। तो उस वक्त उसे क्या किया, पत्थरों से मार मार कर उसे खत्म कर दिया। सो, ये बातें क्यों आप तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि हम सब क्या ईमान रखते हैं। मैं ईमान रखता हूं खुदा बाप पर, उसकी कुदरत पर जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जलाया। सो ये फिरका था सदूकी। सदूकी यानी यहूदियों का एक फिरका जो कयामत और मौत के बारे में क्या था, मुनकर था कि कयामत यानी कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है, और ये फरीसियों के मुखालफ थे। और यहां पर हमने यही देखा कि सदूकी फरीसियों में क्या हुई, तकरार हुई, बहस हुई, और इसके बाद पालूस रसूल बच गया। और इसी तरह हम अगर एक और हवाला देखें इमाल 4:4 उसकी पहली आयत, तो वहां पर भी यही बात चल रही है। इमाल 4:4 उसकी पहली आयत, यहां पर पतरस और यूहन्ना जब यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम इस मकदस को ढा दो यानी कि अगर तुम मुझे मार भी दो तब भी मैं जिंदा हो जाऊंगा। इमाल 4:4 उसकी पहली आयत, इमाल की किताब 4:4 उसकी पहली आयत। और यहां पर जब पतरस और यूहन्ना को उन्होंने डांटा कि इस नाम से ना कोई गवाही देना ना कोई पैगाम देना, यहां से भाग जाओ, तो उन्होंने क्या किया, वो मुसलसल तौर पर मुर्दों की उम्मीद। हम में से कौन कौन जिंदा होने दोबारा जिंदा होने की उम्मीद रखता है, हम सब, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई मुझ में मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए हम सब इस बात का यकीन करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप उन लोगों से वाकिफ हों जो कलाम खुदा में इस बात का इनकार करते थे। इमाल 4:4 उसकी पहली आयत, जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वो सख्त रंजीदा हुए के लोगों को तालीम देते हैं और यीशु के नजरियात देकर मुर्दों के जी उठने की मनादी करते हैं। सरदार काहिन, सदूकी और दूसरे मजहबी रहनुमा नाराज हुए कि ये यीशु मसीह की तालीम देते हैं क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। आपको याद होगा मत्ती की अंजील में भी ये वाक्या मिलता है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो यहूदियों ने क्या किया, कुछ लोगों को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया और ये बात फैला दी कि उसके शागिर्द उसके बदन को चुरा कर ले गए। ये किस लिए सारी बातें अबलीस ने इन लोगों के जहनों में डाली, ताकि यीशु मसीह झूठा ठहरे। क्या यीशु मसीह झूठा है? नहीं, वो सच्चा है। इसीलिए उसने कहा राह और हक यानी कि सच मैं हूं, राह और हक और सच मैं हूं। आगे चलकर हम और इस पर ज्यादा सीखेंगे। वहां पर ये तीन बड़े फिरके थे, सदूकी, फरीसी और फकी। हम आगे चलकर देखेंगे, सीखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बर्दाश्त करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। फिर हम देखेंगे क्रंथियों की कलीसिया में भी, वहां पर भी लोग थे जो पालूस की मुखालफत करते थे। वो कहते थे कि नहीं, यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। वो कहते थे यीशु मसीह झूठा है। फिर यीशु मसीह के बारे में पालूस दलीलों के साथ कहता है, पहले 12 शिगिर्दों को, फिर उसके बाद 500 से ज्यादा आदमियों को, फिर उसके बाद मुझे, फिर उसके भाई यकूब को और दूसरे लोगों को यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद नजर आया। मैं चाहता हूं कि जैसे हम अगले आने वाले महीनों में रोजों के बारे में सीखेंगे, जैसे हम ईद के बारे में अपने आप को तैयार करेंगे, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जितना गहरे तौर पर हम सीख सकें सीखें, मुर्दों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कयामत के बारे में और इस जमीन पर और फिर आने वाले जहान के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। और फिर आपके बारे में कि जो आप यीशु पर ईमान रखते हैं आपका मुकाम क्या है, आप जानना चाहते हैं आपका मुकाम क्या है, निकालें इफिसियों का खत, उसका दो बाप उसकी छठी आयत से। सिर्फ इस आयत को पढ़ूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जैसे खुदा वंद यीशु मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, आपको भी वहां पर जगह हासिल है रूहानी तौर पर। इस वक्त में इफिसियों दो बाप अगर आपको इफिसियों दो बाप उसकी छठी आयत, अगर आपको कभी भी मुश्किल पैदा हो हवाला निकालने के लिए, तो सादा सा तरीका जो मैंने सीखा, फरिश्त में जाएं, वहां पर किताब का नंबर सफा देखें तो एक मिनट में निकल आएगा। सबसे आसान तरीका इफिसियों दो बाप उसकी छठी आयत, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। किन को? हम सब ईमानदारों को। और ये किस तरह हुआ? खुदा के रहम, उसकी दौलत, उसके फजल और उसकी मोहब्बत की बुनियाद पर, कि जब कसूरों के सबब से हम सब मुर्दा थे तो यीशु मसीह में हम सबको क्या किया? जिंदा किया। खुदा ने सबसे पहले हमें रूहानी तौर पर जिंदा किया है ताकि हम उससे बातचीत कर सकें। जब यीशु मसीह आएगा, अगर हम जिंदा होंगे तो जिंदा उठा लिए जाएंगे, अगर मैं मर जाऊंगा तो खुदावंद मेरे बदन को तलब करेगा कि उसकी हजूरी में उसकी परस्तिश और सताइश की जाए। फिर खुदा हमें जिस्मानी तौर पर जिंदा करेगा, और हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को नजर आता रहा, और यीशु मसीह रूह नहीं था बल्कि वो पूरा जिस्म रखता था, वो खा सकता था, वो उसे छू सकते थे और वो उसे देख सकते थे। बहुत सी बातें हैं, एक एक आयत बाइबल मुकद्दस की अपने आप में बहुत ज्यादा कुछ रखती है। किस लिए? ताकि हम सीखें। सो आए हम खुदा के हजूर झुकें, और आप सबको पूरे दिल से किसी भी किस्म की बात की फिक्र करने की लोड़ नहीं, सिर्फ फिक्र करने की जरूरत यह है कि खुदा में हमारा मुकाम क्या है, कि जैसे खुदा आसमान पर यीशु मसीह दाहिनी तरफ बैठा है, हमें भी वहां पर जगह हासिल है। सो इस जमीन पर हमारा मकसद क्या है? तालीम लेना, तरक्की पाना और दूसरों तक उसका कलाम पहुंचाना। सो आए हम सब खुदा के सुर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की हम्द और सताइश करते हैं आज के कलाम के लिए। जिस तरह तूने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, तू हम सब को भी जलाएगा। और खुदावंद, हम यकीन करते हैं सच पर कि तू वो वाहद हस्ती है जिसकी कब्र आज भी खाली है। तू वो वाहद खुदा है जिसने ये दावा किया कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और तूने अपने कहने के मुताबिक किया। और हम सब इस पर ईमान रखते हैं कि तू किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हम सबको इस बात पर खुदावंद मजबूत रहने की कुव्वत और ताकत दे, और खुदावंद तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए।